میں جاتا ہے تو کبھی کبھی غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے. تو باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو جانا, ذرا اس کو کہنا بھائی خرچہ بھیجتے رہا کرو, بہت دن ہو گئے خرچہ نہیں بھیجا, ہمیں مشکلات ہیں اور تمہاری اماں کا آپریشن کرانا ہے. تو پھر وہ آ کر مائک قریب کر لے, یہ دیکھو بیٹا میرے بیٹے کو جا کر پیغام دینا کہ خرچہ باقاعدگی سے بھیجا رہا کرے. تو پھر وہ آ کے سمجھاتا ہے, تو اچھا بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, آج کل اس میں غفلت میں پڑھ کر بھول گیا. اسی طریقے سے یہ جو ہے ہم پردیس ہے یہ ہمارا, اور ہمارا وطن اصلی جو ہے وہ جنت ہے. یہ بات میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ فرما رہے تھے. اس مجلس کا نام رکھا ہے حضرت نے پردیس میں تذکرہ وطن, پردیس میں تذکرہ وطن یعنی وطن کی یاد. جیسے انسان ہے ہندوستان کا پاکستان کا جہاں کہیں کا بھی ہے, جب اپنے وطن کا مل جائے. اور میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دام رکھا تھا ملا عالیہ, جو میرے شیخ اول کے صاحبزادے بھی تھے, حضرت مولانا شاہ عبدالرخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, حضرت کے صاحبزادے جن کو حضرت ساری زندگی فرماتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا مجھ سے بیعت ہونا ہے. سبحان تو انہوں نے فرمایا کہ اب ایک مسافر جا رہا ہے, مان لو ریاض سے مکہ شریف یا مدینہ شریف جا رہا ہے, یا ریاض سے اب وہ جا رہے ہیں ہندوستان یا پاکستان. اب وہ لاؤنج میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. آواز ٹھیک ہو گئی بیٹا؟ وعلیکم السلام. آئیے جناب. تو اب میں کیا کروں جناب, میں نے تو بہت اوپر کر لیا, اب کیا کروں؟ ایئرپورٹ پر جب میں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تو آپ چھپ تو نہیں رہے نا, اور آگے آ جاؤ, ارے پیچھے مت دیکھا کرو, ارے ادھر دیکھو نا مجھے عجیب, تم آگے آ جاؤ بس. ہاں بس وہ خود ایڈجسٹ میں, آپ بھی آگے آ جائیں. اب ٹھیک ہے سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ انالسٹ کا کام ہے نا, سسٹم انالسٹ کرے گا نا کہ کس پروسیجر کو کہاں رکھنا ہے. تو اب وہ ریاض کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے, اب اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا, اب اس نے منہ ادھر کر کے کھانا شروع کر دیا. یہ مثال میرے شیخ نے سمجھائی. اب وہ دیکھتا بھی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, میں کھا رہا ہوں. تو تھوڑی دیر گزری تو اب بات چیت ہوئی ایسے ہی, اب منتظر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے جی میں لکھنؤ جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی لکھنؤ جا رہا ہوں. اچھا لکھنؤ میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا فلاں محلے میں. کہا میں بھی تو وہیں رہتا ہوں قریب ہی. اب وہ جو ایک دوسرے کو پہلے کہتے ہیں مجھے کیوں دیکھا, کہ جلدی سے کولڈ ڈرنک منگواتے اس کے لیے, کہ کولڈ ڈرنک بھی ہو اور سافٹ ڈرنک بھی ہو, کیونکہ پہلے میں اس کے ساتھ سافٹ اسپوکن نہیں تھا. اب پتہ چلا دونوں کی منزل ایک ہے, دونوں کی منزل ایک ہے. تو وہ جو پہلے اس کو غصے سے دیکھ رہا تھا, لیکن اب پتہ چل گیا کہ دونوں کی منزل ایک ہے. تو نتیجہ یہ ہوا اب اس سے پیچھا جا رہا ہے, اب اس کا سامان بھی اٹھا رہا ہے. وعلیکم السلام. آگے جائے بیٹا. اب اس کا سامان بھی اٹھا رہا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ تو آپ کا کام ہے. وعلیکم السلام. کیا کریں گے آپ بتا دیجیے. उसको हाथ में पकड़ लें क्या?
नहीं
है? सही हो गया। चलो माशा तो मैं बात सुना रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بیٹا اس طرف آکے بیٹھ جائے کیونکہ دروازہ کھلے گا آپ کو لگ جائے گا ہاں ادھر بیٹھ جائے بس تو میں مضمون سنا رہا تھا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ ریاض کے لاؤنج میں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ایک نے اپنا اس کے پاس کچھ ٹفن تھا یا ہاٹ پاٹ تھا جس میں اس کے ٹھاٹ باٹ تھے اور وہ ہاٹ اسپاٹ سے کنیکٹنگ بھی تھا آج کل تو وائی فائی ہاٹ اسپاٹ کو تلاش کرتے نا تھوڑا سا سامنے ہو جائے تو اب اس نے کھانا نکالا وہ کھانے لگا تو دوسرا اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کو غصہ آیا کہ یہ مجھ کو کیوں دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور رخ بدل لیا اس نے اب فارغ ہوا تو پھر ایسے ہی اب دونوں منتظر ہیں بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اعلانات ہو رہے ہیں ہر اعلان بھی پہ چونکتے ہیں لکھنؤ کا اعلان ہوا تو یہ بھی چونکا وہ بھی چونکا میں نے پوچھا پھر ایسے ہی آپ کہاں جا رہے ہیں کہ لکھنؤ جا رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہم بھی لکھنؤ جا رہے ہیں اچھا آپ لکھنؤ شہر میں رہتے ہیں جی میں لکھنؤ شہر میں رہتا ہوں کہا میں بھی رہتا ہوں کون سے محلے میں فلاں محلے میں اچھا میرا محلہ بھی اس کے قریب اور نزدیک ہے تب وہ اس کے جائے گا رانی کا جوس لے کر آئے گا کہ اے راجہ میں نے تیری قدر نہیں کی اب تجھے رانی کا جوس دیتا ہوں کیوں اب دونوں کی منزل ایک ہو گئی منزل تو ایک تھی لیکن بے خبر تھے منزل سے واقف نہ تھے نتیجہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے نہیں دیکھ رہے تھے لیکن جب دونوں کو پتا چل گیا کہ ہماری منزل ایک ہے اب دونوں میں محبت پیدا ہو گئی دادا فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم سب کی منزل آخرت ہے اگرچہ آئی ٹی کی فیلڈ کے ہوں انویسٹمنٹ کی فیلڈ کے ہوں ایگریکلچر کے ہوں بزنس سے فیلڈ کے ہوں کسی بھی کوئی بھی ملازمت کوئی بھی کام کر رہے ہو سواری ہمارے ہم سب کی منزل آخرت ہے یہاں رہنے کے وسائل اور ذرائع بے شک مختلف ہیں کسی کو مال دیا کسی کو کم دیا کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے کوئی بنگلہ دیش کا غین کے ساتھ کہ یہ اس کو گاف کو غین بناتے ہیں اور دوسرے ممالک کا لیکن سب کی منزل ایک ہے اگرچہ کوئی خیریت کہ میں نے آسن کر کے پوچھتا ہے کوئی کیا حال ہے کر کے پوچھتا ہے کوئی کئی فلحال لیکن منزل سب کی ایک ہے اور وہ منزل کیا ہے آخرت لہذا جب انسان اپنی منزل کا اس کو احساس ہوتا ہے اور خبر رہتی ہے اور پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے اس کی بھی منزل ایک ہی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے حضرت نے ایک بات اور فرمایا کہ دیکھو بات چل رہی تھی کسی جگہ پر ایک صاحب کہنے لگے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے تو اس کا جواب میں نے سب ایک بات بولی میں نے کہا وجہ یہ ہے اتفاق کے لیے ایک صفت چاہیے ایک صفت ایک کریکٹرسٹک ہو تو سب ہر مسلمان جتنے ہیں سب میں اتفاق ہو جائے گا اور وہ کیا ہے عاجزی پیدا ہو جائے عاجزی پیدا ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں لہذا ہر مسلمان जब मैं अब दूसरे मुसलमान को अपने से अच्छा समझूंगा झगड़ा होगा। आज झगड़ा इसी बात का तो है कि मैं अच्छा हूं, और जब मुझे ये एहसास हो गया कि वो अच्छा है तो झगड़ा करूंगा। इंसान अपने से अच्छे से कभी झगड़ा करता है? झगड़ता तो इसलिए है कि अपने को अच्छा समझता है। कहते जी मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, TCP/IP प्रोटोकॉल पूरे क्यों नहीं मिले, वो तो मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, मुझे इज्जत क्यों नहीं दी। झगड़ा तो यही है ना जी, सारा झगड़ा किस बात का है कि मुझे फुला ने इज्जत नहीं दी। इस तरफ को बैठे, इस तरफ को बैठे ताकि जो है यहाँ ये इस एंगल में बैठना बेटा, छुपना मत। तो लिहाजा सारा झगड़ा इस बात का है कि मुझको फलाने इज्जत क्यों नहीं दी, यही है ना मसला। और अगर मेरे अंदर आजजी पैदा हो जाए, हर मुसलमान से मोहब्बत से मिलूंगा, फिर मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम को भी बुरा ना समझेगा, यानी उसके साथ भी जब मुआमला करेगा उससे भी अच्छा बर्ताव करेगा। और वो जो झगड़े की सारी चीज क्या है, सारी झगड़े की जो सारी जड़ यह है कि मैं अच्छा हूं। वालेकुम सलाम। झगड़े की सारी जड़ क्या है, मैं अच्छा हूं, ये सारी बात है। अगर आज भी पैदा हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर कोई मुसलमान से लड़ेगा? तो लादा ना इत्तेफाकी की जो असल वजह है वो ये है कि मैं अच्छा हूं। लादा जब मैं अच्छा हूं तो फुला को अपने से अच्छा कैसे समझूंगा, जिसको अपने से अच्छा समझूंगा उससे लड़ूंगा ही नहीं। ये होता ना साहब, भाई जिस इंसान को अपने से अच्छा समझता है उसे लड़ता है, और जिसको समझता है कि यह है फला है वह और ऐसा है और कम है उसी पे रोक जमाता है। इसलिए आज इसी बड़ी प्यारी सिफत है। हजरत अक्सर ये वाक्य सुनाया करते हैं, हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन मदीना शरीफ में सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, मुशावरत हो रही किसी बात पर। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजा अबू जर, ये अबू जर है। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव तारिफूनहु, क्या आप इनको जानते हैं? आप इनको क्या मतलब, आसमान के रहने वाले, जमीन वाले को आप कैसे जानते हैं? तो क्या फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम, फरमाने लगे, हुआ अशहरु इंदना मिन शोहरतिन इंदकुम, के हुआ अशहरु इंदना फिस समा मिन शोहरतिन इंदकुम फिल अर्द, कि ये आसमान वालों में तो ज्यादा मशहूर है जमीन वालों से ज्यादा। जमीन वाले इनको कहां पहचानते हैं, ये तो आसमान में इनकी शोहरत है। हुआ शरुइंदना मिन शोहरत इंदकुम फिल अर्द, जमीन वालों में जमीन वाले लोग इनको कहां पहचानते हैं, ये तो आसमान वाले ज्यादा मशहूर है उनमें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई कि मेरे शागिर्द को अल्लाह ने ये मकाम दिया कि फरिश्तों में इनकी शोहरत है, लिहाजा आपने फरमाया बिमाजा नाला हाजिहिल फजीला, कि ये जो फजीलत है ये मकाम इनको मिला कैसे। तो आपने हर जबैल इसकी गवाही दी कि दो वजह से, एक तो लिसगरी ही फी नफसी, अपने को छोटा समझते हैं। अब आप देखिए आ गई हुई आजी तवाजो, आजी और तवाजो आ गई कि जी अपने को छोटा समझते हैं कि मैं सबसे कमतर हूं। और दूसरी वजह सूरह इखलास की कसरत से तिलावत, कुल अल्लाह शरीफ जिसको हम कहते हैं उसकी कसरत से तिलावत, ये दो, क्योंकि अल्लाह ताला की बड़ाई का उसके अंदर मजमून है। इन दो वजूहात से और अपने को मिटाना आजजी, इन दो वजूहात से अल्लाह ताला ने ये नेमत दी कि क्या आसमानों में उनकी शोहरत है। सुभान अल्लाह। इंसान एक आदमी हमारे ہم اپنے قرب و جوار کو میں غور کریں تو جس آدمی کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے وہ ہر ایک سے محبت سے ملتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس عاجزی کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ سلام کیا کریں, سلام کریں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور اس سلام کو پھیلانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کروں, ایسا نہیں, بلکہ جس کو جانتا ہو اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہ جانتا ہو اس کو بھی سلام کریں. مسلمان مسلمان کو سلام کرے, اس سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو, محبت پیدا ہوتی ہے. سلام کی برکت کیا ہے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں البادی بالسلام بریء من الکبر, سلام میں ابتدا کرنے والے کو تکبر سے حفاظت فرما رہے ہیں, تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں. یہ کی نعمت کس کو مل رہی ہے, سلام میں ابتدا کرنے والے کو, گویا سلام میں پہل کرے. اور یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے, یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے. اور ہم مسلمانوں میں اس طرف کو آ جائے بیٹا, آپ ادھر بیٹھ جائیں, جگہ ہے اور آگے آ جاؤ. ہاشمی ادھر اور آ جاؤ. ارے آپ تو بہت کارنر ہو گئے. تو سلام کی ابتدا کریں, اس سے تکبر سے حفاظت فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ سلام بچوں کو بھی فرماتے تھے, اس لیے سلام کریں, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر بات یہ کہ سلام دعا بھی ہے, السلام علیکم, یا تو اتنا کر لے اور رحمت اللہ کا بڑھا لے یا وبرکاتہ تک بھی بڑھا لے, اچھی بات ہے. لیکن اس میں ایک مسئلے کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب نہ دینا, جواب دینا واجب ہے اور جواب نہ دینا گناہ ہے. سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ کی بات ہے کہ ایک مسلمان نے سلام کیا ہم اس کا جواب نہیں دیتے, اس لیے اس کو تکبر کی علامت بھی فرمایا کہ یہ متکبر ہے, یہ شخص یعنی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور جھگڑے کی وجہ آ گئی. رضا اگنے نے سلام کیا اس کا جواب دے. اور جواب دینے میں تین باتوں کا خیال رکھے. نمبر ایک یہ کہ اگر اگلے نے سلام کیا السلام علیکم تو اتنا ہی جواب دینا واجب ہے, وعلیکم السلام. اگر اگلے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اتنا واجب ہے. اور اگر اگلے سلام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک تھے, مثل اس کا بھی مثل ہونا چاہیے. اگر ایک نے سلام کے السلام علیکم اگلے نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ماشاء اللہ یہ تو زیادہ ثواب کی بات ہے, لیکن جواب مثل ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرے. اور یہ نقل نہ کرے گڈ مارننگ, صباح الخیر, مساح الخیر, ان کی نقل نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں ہمیں انہوں نے ایک طریقہ سکھایا ہے. اور پھر اتنی پیاری دعا ہے, اگر ہر مسلمان دوسرے, میرے شیخ فرماتے کہ مسلمان مسلمان کو دعا دے تو بیماریوں سے بھی حفاظت رہے, کیونکہ سلام اللہ تعالی کا نام ہے کہ تم پر سلامتی ہو, سلامتی کی دعا مسلمان ایک دوسرے کو دے رہا ہے. لہذا گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرے. شوہر سلام کرے, بیوی جواب دے, گھر میں داخل ہو رہا ہے, بچوں کو عادت ڈالے کہ بیٹا سلام کرو, جب گھر میں داخل ہو سلام کرو اور گھر والے جواب دیں اس کا. تو جب میاں بیوی آپس میں محبت سے سلام کریں گے محبت نہ پیدا ہوگی. شوہر نے سلام کیا بیوی نے جواب دیا, محبت پیدا ہوئی. مسلمان مسلمان کو سلام کرے گا, لہذا دیکھ لے جن جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ان کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے. اور جو سلام نہیں کرتے اجنبیوں کی طرح رہتے, گویا کہ تمہاری منزل الگ میری منزل الگ,
हालांकि हम सब की मंजिल आखिरत है, हम सबको आखिरत में जाना है, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। ये दुनिया हमारी हमेशा रहने की जगह नहीं है, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। अगरचे कितनी ही आराम की राहत की चीजें यहां पर हो, लग्जरीज हो, यहां पर टैबलेट भी रखी हुई है। पहले पेनाडॉल की टैबलेट जेब में रखता था, अब आईफोन और पैड और टैबलेट भी साथ में रखने लगा। यानी हर वक्त सर में दर्द है इसलिए हर वक्त टैबलेट साथ में रखता है। क्या आलम है कि कोई वक्त सुकून का नहीं है। तो पहले आलम यह तो था कि इंसान जॉब पर जाता था, जब हमारे पाकिस्तान की बात बताते हैं कि उस वक्त जो है यानी 80-90 के जमाने तक यह था कि घर में टेलीफोन नहीं लग सकता था इतनी आसानी से। मतलब मसल मशहूर थी कि दादा अगर एप्लीकेशन देकर जाए तो पोते क्या जो है वो टेलीफोन लगेगा, ये मसल मशहूर थी। पाकिस्तान की बात बता रहा हूं। और जब से ये मोबाइल आया, अच्छा फिर होता यह था जॉब पर है, ऑफिस में, दुकान पर है, तो वहां टेलीफोन अगर लगा हुआ है तो वहीं तक रहा, घर आए तो अपना सुकून से माँ बाप के पास, बीवी बच्चों के साथ हैं, दोस्त अहबाब के साथ है, किसी दीनी मजलिस में चले गए। लेकिन जब से मोबाइल आया तो अब 24 घंटे का बिजनेस शुरू है। जहां तक घंटी बजी, घंटी उसके फोन पे बजेगी, फोन ही निकालेगा। यानी सुकून ही नहीं रहा। रात में सोते सोते भी पहले पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु आहया, अब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं हाउ आर यू। सोते सोते भी व्हाट्सएप चलता रहता, और कोई ताज्जुब की बात नहीं, नींद में भी चलता हो कि नींद में भी वही कि किसी को स्काइप, किसी को वाइबर, किसी को व्हाट्सएप। यानी नींद में भी गोया कि आखिरी वक्त तक पहले पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु अहया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये दुआ तस्बीहात पढ़कर सोए, कलमा शरीफ पढ़कर सोए, आयतल कुर्सी पढ़कर सो गए। लेकिन अब तो व्हाट्सएप पढ़ते हुए सोते, ये आलम हो गया। ऐसा मशगूल कर दिया जालिम ने, जो कि एक इस्तेमाल की जरूरत की चीज थी, लेकिन इसको ऐसा ओढ़ना बिछोना बनाया कि कहीं सुकून ही नहीं है। यानी जाते जाते बाथरूम भी जाते जाते आखिरी वक्त तक यही मुसीबत लगी रहती है। ये आलम है। तो इस दुनिया में अगरचे कितनी लग्जरीज और नेमतें हो, कितनी शानदार गाड़ी हो, जीएमसी हो, फोर्ड्स की गाड़ियां हो या लेक्सस की गाड़ियां, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। और अजीब बात यह है, जो दुनिया से जाता है लेकर कुछ नहीं जाता। ये नहीं कि अपनी कब्र खुदवाकर पहले से इंतजाम रखा और वाईफाई कनेक्शन पहले ही लगा दिया वहां कि स्काइप पर बातचीत चलती रहेगी, बताते रहेंगे हम वहां पे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम गुजरना मुश्किल हो जाएगा ना। स्काइप पर बातचीत करते रहेंगे, खैर खैरियत पूछते रहेंगे। क्या आलम है, यानी कितने अजीब धोखों में हम लोग पड़े हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये जो दुनिया धोखे का घर है। यानी दुनिया असल में अल्लाह ताला ने हमें भेजा था इसलिए कि इस दुनिया को हम वसीला बनाए आखरत का, लेकिन इस दुनिया को हमने धोखे का जरिया बना लिया। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबईई हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के खास शागिर्द हैं, अपने वक्त के मुफस्सिर, बड़े उलमा में, आइम्मा में, मुहद्दिस और फकीह फुकाहा में उनका शुमार होता था। कूफा के मुहद्दिस, कूफा के मुफस्सिर थे। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब फरमाते हैं कि ऐसा आलम था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के साहबजादे, रईसुल मुफस्सिरीन, कूफे तशरीफ लाए तो लोगों ने इनसे तफसीरी सवाल शुरू किए इल्म सीखना, तो नाराज होकर फरमाने लगे कि अंतुम तसअलूननी वफीकुम सईद इब्न जुबैर, तुम मुझसे सवाल करते हो जबकि तुम्हारे दरमियान में इतना बड़ा आलिम रब्बानी तुम्हारे दरमियान में मौजूद है और तुम मुझसे सवालात करते हो। वो फरमाते कि दुनिया धोखे का घर है। वो कैसे? ये बिशर्ते शय है, कंडीशनल है, कंडीशंस लगती है ना कई चीजों के अंदर, प्रोग्रामिंग के भी अंदर भी कॉन्सेप्ट है कि कई कंडीशंस आती है, ये होगा तो ये होगा, फला होगा तो फला होगा, तो ये भी एक शर्त फरमा दी। फरमाते दुनिया धोखा है और वो क्या है? कब? इन अलहदका अन तलबिल आखिरा, अगर तुम्हें दुनिया आखिरत की तलब से गाफिल कर दे तो ये दुनिया धोखा है, धोखे का घर है। और फरमाते लेकिन वही जालत दुनिया जरियातल लिल आखिरा व वसीलतल लहा फहिया निअमल मता, अगर यही दुनिया आखिरत का जरिया बन जाए और उसके बढ़ाने का वसीला बन जाए, आखिरत कमाने का वसीला बन जाए, फरमाते तो बेहतरीन पूंजी है। अब दुनिया को अल्लाह ताला ने अगर हमको दुनिया में भेजा, अगर दुनिया इतनी बुरी चीज होती तो दुनिया में हमें क्यों भेजते? लगा दुनिया खुद बुरी नहीं है, दुनिया खुद बुरी नहीं है, हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो बुरा है। अब रही बात इस्तेमाल, यही चीज सीखने की जरूरत है। और इंसान ये जो नेक सोहबतों में बैठता है, अहलुल्लाह की सोहबत, उलमाए रब्बानियीन की सोहबत, या वो लोग जो काम में लगे हुए और सही रास्ते पे चल रहे हैं उनके पास बैठता है, तो उसको तलब पैदा होती है कि देखो अपने काम को, हमने अपनी जिंदगी को काम में भी लेकर आना है, और उससे नियत की दुरुस्तगी होती है। मेरे शेख एक वाकया सुनाते थे कि एक बुजुर्ग अपने मुरीद के यहां तशरीफ ले गए और वहां पर रोशनदान देखा। पहले घर बनाते थे तो वेंटिलेशन का इंतजाम रखते थे, अब कहते बिल्कुल पैक हो क्योंकि एयर कंडीशन है ना, पहले हवा का गुजर का एहतमाम होता था कि जी क्रॉसिंग हो जाए। इस पर मेरे शेख की एक बात याद आई, बड़ी मजेदार बात है, सुभान अल्लाह, इल्मी बात। फरमाया बाजे लोग ये कहते हैं कि वो सदका नहीं देते कि हमारा माल कम हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करते कि हमारा माल कम हो जाएगा, माल बचा के रखे और आता रहे, जमा करते रहे। लेकिन हजरत ने फरमाया कि देखो कायदा यह है कि जब वेंटिलेशन होती है तो ताजा हवा आती है, एक हवा आके आने के रास्ते पे खिड़की या दरवाजा खुला हो और जाने के रास्ते पे भी खिड़की या दरवाजा खुला हो, तो जब हवा को क्रॉसिंग मिलती है ना तो ताजा हवा आती है, और अगर आने वाला रास्ता तो खोल दिया और जाने वाला रास्ता बंद कर दिया तो ताजा हवा आएगी। फरमाया इसी तरीके से अल्लाह ताला के रास्ते में माल देते रहो, खर्च करते रहो, अल्लाह ताला और देते रहेंगे और अता फरमाते रहेंगे, मिलता रहेगा, क्योंकि वादा है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं, अगरचे उसके पास कितना माल हो। और याद रखिएगा मुसलमान की तरक्की सूद से नहीं हो सकती। खजी नहीं बड़ा हमारी इकोनॉमिक ये सिर्फ फिगर्स में नजर आएगी, याद रखिए जिसको बरकत कहते हैं ना वो फिगर्स में पता नहीं चलती, जिसको बरकत कहते हैं कि तनख्वाह तो कितनी, गुजारा नहीं हो रहा, वो बरकत ऐसी चीज है जो छुपी हुई चीज होती है कि कम तनख्वाह वाला भी गुजारा कर रहा होता है और बहुत राहत के साथ, वो बरकत छुपी हुई चीज है। और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूद की तरक्की की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई जा रहा है आदमी, अब वो जा रहा है तो रास्ते में उसको एक गुंडा मिला, उसके हाथ में डंडा था, उसने उसे कहा मोबाइल दो, मोबाइल भी लिया डंडा भी मारा बाजू पर, अब उसने मोबाइल भी ले लिया, अब रात को सोया जब सुबह उठा तो वो जो बाजू है ना वो इतना इतना बड़ा हो गया, फूल गया, तरक्की नहीं हुई कहीं, तरक्की है कि नहीं भाई? कहते बाजू फूल गया, दोस्त आया उसने कपड़ों में देखा यार तुम तो जबरदस्त, तो आर्नल्ड के बड़े भाई मालूम हो रहे तुम तो, कैसे तुम्हारे बाजू हो गए और सेहत कैसी, तो इसको कोई तरक्की बोलेगा? बाजू तो बढ़ गए
लेकिन इसको सेहत नहीं कहा जाता, ये तरक्की है बीमारी की तरक्की। और एक आदमी बॉडी बिल्डिंग क्लब चला गया, अब वहां पर एक्सरसाइज कर रहा है, दूध बादाम पी रहा है, कसरत कर रहा है, कुछ दिन के बाद उसका जिस्म बढ़ना शुरू हो गया, अब इसको क्या कहेंगे? तरक्की। इसको सेहतमंद तरक्की बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेहतमंद तरक्की। तो याद रखिएगा, सूद से मुसलमानों को तरक्की नहीं हो सकती। और अब तो इस बात को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करने लगे हैं कि मईशत इकोनॉमिक्स सूद पर चल नहीं सकती, ये जालिमाना निजाम है। लिहाजा वो लोग अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करते करते कितने ममालिक ऐसे हैं जो जीरो पर आ गए हैं, जापान वगैरह और ये ममालिक हैं 0.25% करते करते उनका टारगेट ये है कि हमने इसको 0% पर करना है। वो कहते हैं हमने देख लिया ये ऐसा जालिमाना निजाम है कि इससे तरक्की नहीं हो सकती। तो मुसलमान को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अपने मालिक की बात पर ईमान लाना चाहिए कि यमहकुल्लाहु रिबा, कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदकात, सदकात को बढ़ाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इसलिए अब वो घर बनाते हैं, पहले बनाते थे एहतमाम होता था कि वेंटिलेशन हो, अब कहते नहीं सेंट्रली एयर कंडीशनड हो। तो अब वो बुजुर्ग तशरीफ ले गए उस मकान में, अपने मुरीद से वो देखा एक रोशनदान नजर आया, तो अपने मुरीद से पूछा कि बेटा ये रोशनदान आपने क्यों बनाया? कहने लगा हजरत ये मैंने इसलिए बनाया ताकि ताजा हवा और रोशनी आए। देखना भाई दरवाजे का आप ख्याल रखना कि ऐसा ना उनको दरवाजा आगे थोड़ा सा और आगे आ जाए ताकि उनको तो उनसे फरमाया कि ये रोशनदान तुमने क्यों बनाया? तो कहने लगे ये रोशनदान मैंने इसलिए बनाया ताकि रोशनी और हवा आए। तो उन्होंने एक आह खींची और फरमाया काश तुम ये नियत कर लेते कि इससे अजान की आवाज आती तो रोशनी और हवा तुम्हें मुफ्त में मिलती। सुभान अल्लाह। इसलिए अभी मैं बात कर रहा था रास्ते में आते हुए कि गाड़ी ले, अब नियत को दुरुस्त करें। अब गाड़ी ले, अब हमने तो गाड़ी इस नियत से लेनी है कि ताकि मेरे यार दोस्तों को भी पता चले कि मेरा स्टेटस जो है वो अपग्रेड हो रहा है। अब तो ये नियत है, स्टेटस अपग्रेड हो रहा है। स्टेटस के लिए ना ले, क्योंकि दुनिया है, जो जालिम स्टेटस के लिए काम कर रहे हैं वो दुनिया में कर रहा है। और अगर वही इसलिए कर ले कि चलो कोई अल्लाह वाला आ जाए, कोई आलिम आ जाए, उनकी खिदमत करूं और उनको बयान के लिए ले जाऊं, तो जाहिर बात है साल में कितनी दफा आएंगे? 2-4 दफा। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी अपने इस्तेमाल में होगी और मुफ्त में सवाब मिलेगा। तो इसलिए क्या, नियत की दुरुस्तगी ये बहुत अहम चीज है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का मदार नियतों पर है। और ये नियत ऐसी चीज है कि अजर को कहां से कहां लेकर चले जाती है। अब एक आदमी है, अब वो बयान कर रहे हैं इस नियत से कि लोग वाह वाह करें, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के बल मुंह में डाला जाएगा, क्योंकि गैरुल्लाह को मांग, अल्लाह से गैरुल्लाह मांग रहा है। इसलिए अच्छा काम बुरी नियत से, अगर अच्छे काम में बुरी नियत कर ली तो वो काम बुरा हो जाता है, लेकिन बुरा काम अच्छी नियत से अच्छा नहीं होता, याद रखिएगा। क्या मतलब? इसकी एक मिसाल है, एक आदमी जो है वो मालदारों उसके डाका डालता है, गरीबों की मदद करता है। मालदारों के जी ये जो है ना ज़कात नहीं देते, चलो मैं इनके डाका डालूं, चोरी करूं इनका माल, फिर इससे गरीबों की मदद करूंगा। तो ये मिसाल है कि अच्छा काम बुरी नियत से बुरा हो जाता है, लेकिन बुरा काम अच्छी नियत से अच्छा नहीं होता। इसलिए याद रखिएगा, ये जो दुनिया है, ये दुनिया अगर धोखा है तो बिशर्ते शय है। एक आदमी शादी करता है, ये शादी करना दुनिया नहीं है, तिजारत करना दुनिया नहीं है, माल कमाना दुनिया नहीं है, लेकिन नियत क्या है? कि हम क्यों माल कमा रहे हैं, हम क्यों तिजारत कर रहे हैं, अगर उसकी नियत यह है कि रिज़्क़ हलाल मुझको मिले, तो यह आयन दीन है, याद रखिएगा, यह आयन दीन है कि रिज़्क़ हलाल है, मैं अपनी जरूरत और अपने बीवी बच्चों की जरूरत, अपने मां बाप की जरूरत पर खर्च कर रहा हूं। और इस रिज़्क हलाल के साथ साथ सिर्फ यह हदीस शरीफ याद कर लेना कि तलबु रिज़्क कस्ब हलाल फरीवतुम बादल फरीवा, के कस्ब हलाल कमाना यह फर्ज है, तो बादल फरीदा फर्ज है, यानी दूसरे भी फराइज है। क्या मतलब? जमात की नमाज, ऐसा ना हो कि मस्जिद की जमात की नमाज छोड़ दे। लिहाजा वो जो मस्जिद की जो असल जमात है उसकी फिक्र करे, असल जमात की फिक्र करे, ये नहीं कि जहां चाहे दाखिल हो गए अब चलो भाई कोई ना कोई जमात तो हो जाएगी, लेकिन असल जमात की फिक्र करे, उसका एहतमाम करे। तो ये शख्स जो हलाल कमा रहा है, हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स हलाल कमाता है, उसमें थक जाता है, अब शाम को वापस आए, हाय उई दर्द से जो है वो उसको तकलीफ से आहोजारी कर रहा है, आह काह कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। इतना तक इसके फजाइल है। तो लिहाजा अब वो जो कमाना है मेरे दोस्तों, अगर गाड़ी रखता है, चीज लेता है, तो उसमें नियत देख ले कि इसको मैंने किया क्यों है और ये करना है क्यों है। इसलिए इसके लिए एक रहबर की जरूरत है कि एक रहबर ले ले ताकि हमारा हर काम अच्छा हो जाए। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया खुद बुरी चीज नहीं है, ये दुनिया खुद बुरी चीज नहीं है। अगर दुनिया बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला इस दुनिया में क्यों भेजते। लेकिन इस दुनिया को आखिरत का जरिया बनाए, इस दुनिया को आखिरत का जरिया बनाए। जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह से आते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी ना हज करते हैं ना उमरा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसे भी लोग हैं ना। और फिर अल्लाह ताला का करम और एहसान कितना, अल्लाह ताला का करम और एहसान, हमारे यहां कितनी सहूलत है इस मुल्क में रहने वालों के लिए। थोड़ा इस तरफ आ जाए, ऐसा ना दरवाजा खुले आपको तकलीफ होगी, थोड़ी सी जरा आइए। तो इस मुल्क में रहने वालों को कितनी सहूलत है कि नमाज के औकात में दुकान या मुलाजमत के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो भाई नमाज पढ़ो जाकर, कितनी बड़ी सहूलत की बात है। लेकिन अगर हम इस सहूलत से फायदा उठाने के बजाय कि हम अपनी आदत जो है वो नमाज की बना लें, यानी अच्छा है यार ये तो मुल्लाओं का काम है भाई, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हम क्यों नमाज पढ़े, और ये भी कोई तरीका है जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, ये भी कोई तरीका है जबरदस्ती नमाज पढ़ाना। भाई मेहमानदान जाता है तो वहां पर कहता है नहीं साहब खाइए, ये मंदी है, रुज बुखारी है, जरा जूस पीजिए। वहां तो बड़े खुश होते हैं कि यार देखो कितनी मोहब्बत से हमें पिलाते हैं, तो खुश होना चाहिए कि जबरदस्त। और ये शेर भी पढ़े, जबरदस्ती लगा दी बोतल मुंह से साकी ने, मुतव्वे ने यानी जबरदस्ती लगा दी बोतल मुंह से, जबरदस्ती लगा दी बोतल मुंह से साकी ने, और मैं कहता ही रहा हाँ हाँ नहीं साकी नहीं साकी, कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नमाज शुरू कर दी। तो खुश होना चाहिए कि कितना अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क में रहने वालों को देते हो, इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि नमाज की सहूलत कितनी बड़ी नेमत है। और फिर मस्जिद माशाल्लाह करीब करीब करीब, कितनी बड़ी नेमत अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी अगर हम नमाज ना पढ़े तो अल्लाह ताला ने तो हम पर नेमत को ताम किया। अगर हम वही कहे उसी दुनिया माल कमाने के चक्कर में रहे कि नहीं इसी माल बढ़ जाए बस मेरा, तो माल कमाना ये भी बुरी चीज नहीं है, शरीयत इसको भी मना नहीं करती कि अगर कोई आदमी किसी का माल ज्यादा हो तो। देखिए शरीयत में कितने अहकाम है जो माल पर है, जैसे जकात है वो तो है ही माल पर, हज है वो भी माल पर है, उमरा भी माल पर है। हारून रशीद के जमाने में एक शख्स आया खलीफा हारून रशीद के पास और आकर कहने लगा कि मुझे हज पे जाना है, मुझे पैसे दे दीजिए। तो बादशाह हारून रशीद ने फरमाया
भाई जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम पर हज फर्ज नहीं। उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, फतवा पूछने नहीं आया। आपने पैसा मांगा है, फुलूस मांगा है, फतवा नहीं मांगा मैंने आपसे। तो माल का ताल्लुक, माल कितनी बड़ी नेमत, इंसान सदकात, दीन की खिदमतें हो रही हैं, किसी की इलाज है, कहीं पर कुएं की जरूरत है, कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं मदरसा बन रहा है, दीन वालों पर है, कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन ये माल पर, लिहाजा माल का माना मुतलक खुद बुरा नहीं है, माल का माना ये खुद बुरा नहीं है कि जिस तरह से हमारे यहां बाज लोग कह देते हैं कि साहब ये बस ये तो दुनिया है। तो याद रखिएगा, इसको दुनिया, दुनिया की जो तारीफ है, दुनिया की तारीफ मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, हर वो चीज जो तुझको अल्लाह ताला से गाफिल कर दे वो दुनिया है। अब उसी में याद रखिए, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, अब वो नमाज पढ़ रहा है और ये नियत है कि लोग देखें कि मैं कितना बड़ा नमाजी हूं, तो अब ये नमाज पढ़ के दुनियादार है। एक शख्स कुरान पाक अच्छा पढ़ रहा है और इसलिए पढ़ रहा है कि लोग मेरी तारीफ करें, मैं कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ता हूं, ये शख्स कुरान पाक पढ़ के दुनियादार है। एक शख्स बयान कर रहा है और बयान करके लोगों की वाह वाह चाहता है, ये शख्स बयान करके भी दुनियादार है। एक शख्स हज उम्रे बहुत कसरत से करता है इसलिए कि लोग कहे कि कसीरुल हज है, कसीरुल उम्रा है, उम्रे कसरत से करता है, हज कसरत से करता है, ये शख्स हज उम्रा करके भी दुनियादार है। और एक वो शख्स जिसके पास माल है और उस माल में वो माल का हक जारी करता है, और माल का हक यह है जकात है, जकात अदा की। और ये मसला याद रखिएगा कि जकात अंग्रेजी यानी जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि मुहर्रम और अरबी जो शरीय जो इस्लामी महीने उनके हिसाब से होगी, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून एंड या सितंबर एंड या दिसंबर एंड ना बनाए। जकात का जो ईयर है, जकात का जो हिसाब है वो अरबी तारीख से होता है, उस हिसाब से करें। अब वो जकात देता है, रमजान शरीफ आया, फितर अदा किया, कुर्बानी का मौका है, माशाल्लाह कुर्बानी की, कहीं उसको मौका आया किसी की कोई बीमार है, बीमार में पैसा लगाया, अच्छा भाई मेरा भी इतनी गुंजाइश है, ये लो भाई मस्जिद बन रही है, मस्जिद में हिस्सा लगा दिया, किसी जरूरतमंद है उसकी जरूरतमंद को मदद कर दी, कोई बेचारा परेशान आया, अब वो बार दफा दो आते हैं, अब वो परेशान होते हैं, उनकी नौकरी वगैरह नहीं होती, अच्छा चलो यार ये रखो जब हो जाए दे देना, तो मदद कर रहा है। अब ये माल का कितना प्यारा इस्तेमाल है। और वही माल कहेंगे नहीं जी हमारे पास, हम जो है वो लैपटॉप खरीदेंगे और टच स्क्रीन वाला डिटैचेबल वाला खरीदेंगे और फला मोबाइल और ये और उस हर चीज के अपनी लग्जरीज में खर्च करता है, लेकिन जालिम किसी पर खर्च नहीं करता। तो ये माल क्या है, ये धोखा है कि नहीं मैं जमा करूंगा, वहां भी फ्लैट और वहां भी प्लॉट, वहां भी जमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरत का रखे, अच्छा भी बना ले, मना नहीं है, अपनी राहत का भी बना ले, सोफा भी रख ले, कारपेट भी हो, कालीन भी हो, मना नहीं है। लेकिन बात वही आ गई कि नियत क्या करता है, और इसी नियत को सीखना जरूरी है। लिहाजा एक आदमी शादी करता है और शादी इस नियत से कर रहा है कि मैं वो मेरे तकवा का जरिया बने, यानी मैं गुनाह से बचूं, बजाय कि इंटरनेट पर बदमाशियां और हराम चीजें देखूं या कहीं और मुंह काला करने की फिक्र करूं कि कॉजवे के जरिए से चलो बहरीन के चक्कर लगा ले, कि पैसा तो है हमारे पास, बस वीकेंड आए भाग जाओ वहां पे बदमाशी करें, नहीं शादी करूं हलाल तरीके से, अल्लाह मुझे औलाद दे, अपने और उसके लिए दीन की फिक्र करे, अपने घर वालों को दीन सिखाने की फिक्र करे। और दीन सिखाने के माने ये नहीं है कि उसको अंडा ना खिलाए या मिरिंडा ना पिलाए, सुन्नतों पर अमल, घर में है जैसे सलाम है, अब देखिए माशाल्लाह इस घर का ये इस्तेमाल है, देखिए ना एक ही इस्तेमाल है ये घर का माशाल्लाह, कि हमारी अल्लाह के लिए मुलाकात हो रही है, ये भी एक इस्तेमाल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है नेमत। तो लिहाजा वो औलाद को, यहां तक कि अच्छे कपड़े पहनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी मना नहीं फरमाया, शरीयत ने इसको भी मना नहीं किया, एक आदमी अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बात वही है अच्छे कपड़े पहनकर चौधरी साहब बने हुए, कि जहां बच्चे ने भी हाथ लगाए, ओए पीछे हटो, बदलो अजीब मिजाज होता ना, और फिर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी पूरी नमाज में तो ये कपड़े। इस पर बात सुनिए, अजीब बात याद आई, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक जगह लोग सहन में नमाज पढ़ रहे थे, उसी में एक नवाब साहब भी थे, नवाब थे उसी हिसाब से अल्लाह अपने कपड़े पहने हुए थे उमदा कपड़े। बारिश शुरू हो गई, आप तसव्वुर करें अगर बारिश हो जाए हम नमाज पढ़ो क्या करेंगे, तोड़ के भाग जाएंगे ना नमाज तोड़ के, यही हुआ, सारे नमाज तोड़ के अंदर भागे। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो नवाब साहब सबसे ज्यादा पूरी मस्जिद में जिनके सबसे ज्यादा कीमती कपड़े थे वो नमाज पढ़ते रहे, और जब नमाज मुकम्मल की फरमाते फिर अंदर गए, हजरत रोने लगे और रोकर फरमाने लगे इस शख्स को हक हासिल है कि अच्छे कपड़े पहने। सुभान अल्लाह, ठीक है आपने साहब, हम जरा दो रुपए दो उसके कपड़े पहन ले तो जनाब कोई बच्चा भी हाथ ना लगाए फला भी ना करे, और शादी में चले जाए तो अपने ही सेटिंग करते रहते हैं, सभी दूल्हा बने हुए होते हैं कितना अजीब आलम है ना। तो भाई कपड़े अच्छे पहनना ये शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन उन कपड़ों को सब कुछ बनाना कि सना बस यही है, ना बच्चे को करीब हो ना किसी से बात करे ना कुछ, तो ये इस चीज को क्या कहा, ये है धोखा, और इसको कहा दुनिया। और वही चीज इंसान अच्छे कपड़े पहनता है कि भाई मेरी तबीयत है बात सफाई, और अच्छे कपड़े पहनने के माने ये नहीं कि महंगा हो, ये शर्त नहीं है, अपनी हैसियत के माफिक हो लेकिन साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो, इस चीज को पसंद किया, ये शौक ये जौक शरीयत का है कि सफाई सुथराई हो। जैसे इसीलिए फरमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल करे, अपनी हैसियत के माफिक अच्छे कपड़े पहने। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि ऐ आदम के बेटे तुम जब मस्जिद में जाओ तो उमदा कपड़े पहन कर जाओ। यहां इससे मुराद है अच्छा लिबास पहनना, ये नहीं कि ऑफिस में और शादी में तो अच्छे कपड़े पहनने के जा रहे हैं और मस्जिद में जो है बनियान और शरवाल में चले गए, और ऐसे ही कपड़े नहीं, उमदा कपड़े अच्छे कपड़े अपनी हैसियत के मुआफिक पहन कर जाओ। सुभान अल्लाह, और आगे फरमाया कुलू वशरबू व कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो। दादा इसराफ के बारे में उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसराफ के एक माने क्या है, इसराफ के एक माने तो यह है कि इंसान खाना खा रहा है चावल दस्तरखान पर गिर रहे हैं उठाता ही नहीं जनाब, जैसे हमारा क्या हिसाब कि देखे ऐसा लगे कि क्या हम लोग खा रहे हैं, कि चावल गिरे तो उसको साफ कर ले, नवाला गिर गया सुन्नत ये कि उसको साफ करके खा ले, चावल गिरे उसको ऐसे खाए कि पता चले कि कोई इंसान खा रहा है, क्योंकि जब जानवर खाते ना तो जब वो बर्तन में मुंह मारता है तो कुछ चारा इधर गिरता है कुछ इधर गिरता है, फिर उसको मुंह नहीं लगाता। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुसलमान बनाया, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें एक एक चीज सिखाई, उसमें ये भी सिखाया कि देखो गिर जाए नवाला उसको उठाकर खा लो, प्लेट से कोई बाहर गिर गई तो वो नजीस नहीं हो गया, उसको उठाकर खा लो भाई, दस्तरखान बिछाया इसीलिए जाता है। तो इसराफ के एक तो माने ये है, और फिर वही खाना दस्तरखान पर लपेटा कचरे में डाल दिया। क्या इस शहर में ऐसे लोग नहीं है जो बेचारे खाने के लिए तरस रहे, कमी है ऐसे लोगों की इसी शहर में जहां माल की कमी नहीं है, यहां पर भी ऐसे लोग हैं ना जो बेचारे जरूरतमंद है, खाना है उनके हवाले कर दे, ठीक है भाई दादा, इंसान जैसे कभी मेहमान आता है पकाता है इसी से कि चलो भाई मेहमान को कम ना हो, बच गया तो उसको चलो अगर किसी को देता नहीं तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दे अगले दिन खा ले, हमारी क्या इज्जत में कमी हो जाएगी कि अगले दिन हम खाना खा लेंगे अगर वो बचा हुआ खाना खा लेंगे क्या। और फिर अगर चलो रखना नहीं है किसी को दे दे कि ताकि वो काम में आ जाए, उसको ऐसे उठा के लपेट के कचरे में डाल देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इसलिए खाने वालों को भी चाहिए बोटियां थोड़ी सी तोड़ी थोड़ी सी खाई, चावल उसमें बचे ऐसे छोड़ दिया कि अगला कैसे खाएगा उसको, किसको देंगे, ऐसे गरीब भी कहेगा यार ये क्या तरीका है, इंसानियत भी कोई चीज होती है, तो बजाय इसके कि इतनी बोटियां लालच में लेकर जमा करे उसको साफ कर दे ताकि किसी को देखकर वो ना हो। और इसराफ के एक माने और फरमाए, अजीब बात है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसराफ के माने ये कि एक मरतबा जब दिन में खाना खा लिया दोबारा ना खाओ, लो जी सब फंस गए ना, कहे मुल्ला ने तो अच्छा फंसा दिया, हम तो चार चार टाइम खाते हैं, यहां तो एक ही में तो फंसे। वाकई हदीस शरीफ में यह है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दफा खाने लगी, आपने मना फरमाया। अब इसकी शरह क्या है, घबराइए मत। एक ही दिन में अगर सबकी रोटी बंद कर दी भाई, अल्लाह बचाए, तो हमारा सारा खाना बंद कर दिया। खाने के इसराफ के माने ये हैं कि इंसान को अगर भूख लगे तो दोबारा भी खा सकता है। ये नहीं है कि टाइम हुआ 8 बजे लाओ रोटी लाओ, अब जगह है नहीं है, बस ठूसो अंदर इसको। जैसे कराची में ना एक रेस्टोरेंट है ना भादराबाद में, ठूसो रेस्टोरेंट, उसका नाम ही है ठूसो। आप कराची पाकिस्तान के तो नहीं है ना, वो भादराबाद कराची में है, वो उसका नाम ही ठूसो है। तो अब जो है ये नहीं कि बस टाइम देखा, बस ठूसो अंदर किसी तरीके से, भूख है नहीं है, बस डाले जाओ अंदर, अंदर बर्तन है, गोया जंबील है, अंदर जाए खा ले, डाले जाओ, क्या खुद ही निकल जाएगा, रिसाइकल होके निकल जाएगा। ये इसको कहा इसराफ है। और इसराफ के एक माने ये भी है, आप सल्लम जो फरमाए कि खाओ पियो और इसराफ से बचो, इसके माने एक ये भी है कि थोड़ी सी भूख छोड़ दो, जरा हवा के लिए भी जगह छोड़ो, पानी के लिए भी जगह छोड़ो। ऐसा नहीं है कि पानी तो रकीक और लिक्विड है, वो तो अपनी जगह खुद बना लेगा, बाकी इतना ठूसा है इसके प्रेशर से हवा क्यों ना निकलेगी। नहीं तो क्या, इसमें यह भी सिखाया कि ऐसा मत खाओ। लगा आप देखिए आजकल डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है, कहते हैं अपना वेट कंट्रोल कीजिए, यही बोलता है ना, वो ये तो नहीं कहता ना ज्यादा खाइए। आजकल तो डॉक्टर यही कहता है कि अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए, अपना वेट कंट्रोल कीजिए, यही कहता ना। अगर अब तो बहुत ही शाज और नादिर ऐसे लोग हो गए, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हो गए कि डॉक्टर कहता हो खुदा के लिए कुछ खाओ, अब तो यही कहता है कि वॉक करें, डाइट कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें, कमी करने को कहता है, तो पता चला कम करने में आफियत है। तो उसके अंदर एहतमाम करें वो, क्या कि भूख थोड़ी सी छोड़ दे, ये शरीयत ने सिखाया। अगर एक यहूदी तबीब आया मदीना शरीफ में, 6 महीने रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अरज किया कि यहां तो कोई आता नहीं, मेरी तो दुकान ही नहीं चल रही। फरमाया कि चल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे सहाबा की आदत यह है कि जब भूख लगती है उस वक्त खाना खाते हैं, और जिस वक्त भूख अभी थोड़ी बाकी रहती है खाना छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहेंगे असल में बात यह, उस वक्त 7-Up इजाद नहीं हुई थी। ये तो 7-Up की बरकत है, हम इसलिए इतना खाते हैं। तो मेरे पे के क्योंकि जी अब तो कितनी है, 7-Up है, यानी इतना आप फ्लोर तक चले जाओ कि 7 फ्लोर भर जाए, 7-Up पियेंगे 1 डाउन हो जाएगा और सब खत्म। तो इसलिए ये नहीं कि ये एक बड़ी सेहत के लिए बड़ी मुफीद चीज है, सेहत के लिए बड़ी मुफीद चीज है। इसलिए मैं कराची में बात कहता हूं कि अब हमारे इतने आदि हो गए, चलते हैं नहीं, इतने आदि हो गए कि हम्माम भी मोटरसाइकिल पर जाते हैं, क्योंकि कराची में मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा, तो हम्माम भी मोटरसाइकिल पर जाते हैं, और यहां हम्माम भी गाड़ी में जाते हैं। इतना यानी जरा से काम के लिए चलने की बात करें, अरे साहब चलना, ये घर में चलते तो हैं, अपने सोफे से उठकर चल के बेड पे जाते, इतना तो चल लिया। तो ये चीज मेरे दोस्तों सेहत के लिए मुजिर है। लगा दुनिया इसका ना, दुनिया तो ये होती कि हम दुनिया को भी फायदा उठाते, और वो फायदा ही उठाते कि सेहत होती कुछ उससे, इसको कहते हैं एंजॉय करना। लेकिन अब आलम क्या है, कहते जी इसे हम इसलिए गुनाह और ये करते हैं, लाइफ एंजॉय करें, एंजॉय योर लाइफ। तो ये जो एंजॉय लाइफ है ना, ये असल में है एंड ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, एंड ऑफ जॉय यानी एंड, ये खत्म हो गए, ये जो हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो जिंदगी का सुकून और इत्मीनान है मेरे प्यारे दोस्तों, ये खत्म हो गया। तो इसलिए दुनिया इस चीज का नाम है कि जो चीज हमें अल्लाह ताला से गाफिल कर दे। इस बात को हम याद रखें कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है, और दुनिया से जाकर ये जो मसला मैंने अभी जिक्र किया था, तो याद रखिएगा सलाम का जवाब देने में 3 वाजिब हैं। नंबर 1 तो वाजिब यह है कि सलाम का जवाब देना,
اور نمبر دو واجب یہ ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا یعنی اس کے مثل جواب دینا یہ بھی واجب ہے. سلام کا مثل جواب دینا یہ بھی واجب ہے. اور تیسرا واجب یہ ہے کہ اتنی زور سے سنائے کہ اگلا بھی سنے, اس کی اتنی زور سے جواب دے کہ اگلا بھی سنے. لہذا اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی اس کا مثل, یہ واجب ہے. البتہ اگر ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بھی کہتا ہے تو اس کو مزید اجر ملے گا. اگر مسئلہ یہ سمجھ میں نہ آئے تو ذرا علماء سے معلوم کر لے کہ یہ تین واجب ہے اس چیز کے اندر, کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ اس کے جو ہے وہ بھی جو ہے تیسری اور تیسرا تین واجب ہے. ایک واجب جواب دینا, دوسرا واجب یہ ہے کہ اس کا مثل جواب دینا, اور تیسرا واجب یہ ہے کہ اس کو اتنی زور سے بولے کہ آواز بھی سنائے دے. اب یہ نہیں کہ ہم نے سلام کیا السلام علیکم دوسرا جواب دو وہ جی میں نے جواب دے دیا سنا ہی نہیں, تو ایسا نہ کرے بلکہ جواب سنائے بھی, یہ جواب سنانا یہ بھی واجب ہے. یہ تین ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے, کہ دنیا وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. باقی جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا تعلق کا ذریعہ بن جائے تو ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہی اسپیکر ہے, اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں. تو کیا اب یہی اسپیکر کام کا مطلب ہے, یہ بغیر دنیا کی چیز ہے لیکن اب یہ آخرت بن گئی. اور اگر اسی پہ ڈیک چلائیں یا کوئی فنکشن کے پروگرام کریں تو نتیجہ کیا ہے کہ یہی چیز ہمیں آخرت سے غافل کرنے والی اور عذاب کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھائے, ربنا آتنا فی دنیا حسنا, ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما, دنیا میں بھلائی عطا فرما, دنیا کی بھلائی عطا فرما. سبحان اللہ, پتہ چلا دنیا کی بھلائیاں یہ بھی ایک چیز ہے. اگر اور پھر وفیل آخرت یہ حسنہ, اور آخرت کے بھی حسنہ عطا فرما, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقدم فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور یہ دنیا آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے, یہ دنیا آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے. بس کسی اللہ والے کی صحبت سے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا کو آخرت کیسے بنائیں, ہمارا ہنسنا بھی آخرت بن جائے. جیسے انسان اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے, ہنسنا بھی آخرت بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ ماں باپ کے پاس گیا, اب وہ ماں باپ سے محبت سے مسکرا کر ملتا ہے, ان کو ہنساتا ہے, وہ بیمار ہیں, ان کو کوئی لطیفہ سنا دیا, کوئی ہنسی کی بات سنا دی جس سے وہ خوش ہو گئے, تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ ہمارا ہنسنا بھی عبادت ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے, بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے, اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. دیکھیے اب بتائیے یہی چیز ہے. تو یہی چیز ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اس بل بیٹھنے کو اپنی محبت اور دینی ترقی کا ذریعہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله تعالى اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو آخرت کی طرف راغب فرما. یا اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ دین شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اور یا اللہ دین کی محبت اور عظمت کو غالب فرما. جن کی صحبتوں سے اللہ آپ کی محبت آپ کا تعلق ملتا ہے ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. ارے بھائی اس کو چھوڑ دو, پہلے جو ضروری کام ہے وہ کرو. ہماری جو ہے وہ دنیا کے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اپنی محبت اور تعلق یا اللہ تمام تعلقات پر غالب فرما. اور یا اللہ اہل مقروض کے قرض کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو نیک اور یا اللہ جو ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا. ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ تعالیٰ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کو ظلم سے باز فرما, جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا, ہم سب کو اپنے ماں باپ کا, اپنے بڑوں کا, علماء کا, اساتذہ کا فرما بردار بنا, اور یا اللہ اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے, ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.